ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। क्राउन प्रिंस की ये पहली भारत यात्रा है। उनके साथ संयुक्त अरब अमीरात यूएई के कई मंत्री और व्यापार शिष्टमंडल भी आया है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का कार्यक्रम है। श्री नाहयान राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। वे मंगलवार को मुंबई जाएंगे और एक व्यापार फोरम की बैठक में शामिल होंगे। हाल में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सामरिक भागीदारी मजबूत हुई है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा नए और उभरते क्षेत्रों में भागीदारी के नए रास्ते खुलेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। 2 दिन की यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है, जहां लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। यात्रा के दूसरे चरण में डॉ जयशंकर मंगलवार को जर्मनी जाएंगे। वे जर्मनी के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री बृहस्पतिवार को स्विट्जरलैंड जाएंगे। डॉ जयशंकर स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से भी वार्ता करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है और ये युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व पर बल दिया गया है। श्री धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर में 18 और 25 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू में रामबन जिले में एक सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के कांग्रेस पार्टी के दावों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा सत्ता में है उसे बहाल नहीं किया जाएगा। श्री सिंह ने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आरोप लगाया कि भाजपा लोगों को यह कहकर गुमराह कर रही है कि अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आएगी तो आतंकवाद फिर बढ़ेगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में कहा कि अगर उनकी सरकार नहीं होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तानाशाही तरीके से काम कर रहा होता। इस बीच प्रदेश भाजपा ने निर्वाचन आयोग से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नामांकन रद्द करने की मांग की है, क्योंकि वे कश्मीर की जनता को धमका रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि गंदरबल के पूर्व सरपंच ने उमर अब्दुल्ला की सहमति से धमकी दी है कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे का समर्थन नहीं करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। इस बीच पार्टी ने आज 10 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की। मणिपुर सरकार ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण सोमवार और मंगलवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। मोइरांग में कल बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत के बाद स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। पेरिस पैरालंपिक खेलों का भव्य समापन समारोह आज रात 11:30 बजे स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा। तीरंदाज हरविंदर सिंह और धाविका प्रीतिपाल भारतीय ध्वजवाहक होंगे। आज पूजा ओझा कैनोइंग स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने से चूक गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।